श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 23 श्लोक संख्या 9 दिनांक 9 जून 2015 स्पीकर हिज ग्रेस वनवाली प्रभु
स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितां तां सजीवं सादवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो मावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोरतविषे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे भक्त वत्सल भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल परब्रह्म दया के मूर्ति दया के सागर कृपा के सिंधु कृपा के निधि सर्व मंगलमय मंगल मूर्ति रसराज रसिक शेखर अखिल रसामृत मूर्ति भगवान श्री कृष्ण चंद्र एवं उनके प्रियतमा श्रीमती राधा रानी के परम अनुकंपा एवं महती कृपा से आज हम आप उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर प्राप्त कर रहे हैं और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है सत्संग का आज हमें प्राप्त हो रहा है इस भागवत सत्र के माध्यम से। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी श्री श्री गौरनीताई जी इनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करते हैं। तदंतर जिन महान व्यक्तित्व के माध्यम से भगवान का वो असीम कृपा बड़े सरलता से हमें आज प्राप्त हुई है वे है कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी इनके चरणारविंद में भी नतमस्तक होकर कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करते हैं। तदंतर यहाँ पे उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महाअनुभवी भक्त वृंदों के चरणारविंद में प्रणाम अर्पित करते हुए आज के सत्र की ओर हम अग्रसर होते हैं। बहुत ही भाव भरा और प्रेम से भरा कथा, भगवत भक्ति से पूर्ण भगवान उनके भक्त के आदान प्रदान, ऐसे कथा का वर्णन श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज जी परीक्षित महाराज जी को सुना रहे हैं। भगवान कृष्ण वो प्रेम के भूखे हैं, भगवान कृष्ण ये भक्तों के वत्सल हैं, वो भगवान कृष्ण के माधुर्य रसमय प्रेम का कथा जो सबका हृदय को भा लेता है, ऐसे कथा का वर्णन करते हुए उन महान भक्तों के वर्णन कर रहे हैं जो आज तक कृष्ण का दर्शन नहीं किए हैं। वे आज तक केवल कृष्ण के नामों को सुनते आए, कृष्ण के लीलाओं को सुनते आए। ब्रज के गोपियां जो कि शुद्ध कृष्ण भावना भावित या उत्तम कोटि के भक्त हैं, उनके द्वारा सुने गए कथाओं को मन में धारण करते हुए कृष्ण को देखने के इनके हृदय तरसने लगे। परित्राणाय साधु नाम, ऐसे साधन साधु साध्वी के ताप को तारने के लिए भगवान लीला करते हैं, और खास करके ये जो लीला है उन साध्वी उन ब्राह्मण द्विज पत्नी जो कि भगवान की कथा श्रवण करके उनका मन पूरी तरह से कृष्ण भावना अमृत हो चुका था, कृष्ण को देखने के लिए तरस रहे थे, कृष्ण को पाने के लिए तरस रहे थे, पर लाचार है क्योंकि वे ब्रज से बहुत दूर मथुरा के बहुत निकट हैं और समाज का बंधन है और विवाह का बंधन है, परिवार का बंधन है, इन सब से बंधे हैं, पर भक्ति जो है भगवान का वो ना तो समय के द्वारा बंधित है, स्थान के द्वारा बंधित है। भगवान को हम जहाँ से स्मरण करेंगे, भगवान को हमारा वो प्रेम बराज जो सेवा है जरूर पहुँच जाती है। और भगवान ने आज ऐसा लीला किया, कहा कि चलो हम जाते हैं, और चलते चलते बहुत दूर गए, वे चले नहीं, दौड़ते दौड़ते गए, आगे आगे गाय जा रहे हैं, पीछे पीछे सारे गोप सखा जा रहे हैं, जैसे वर्णन हुआ है वह नाचते गाते खेलते हुए जा रहे हैं। दोपहर के धूप या गर्मी के कारण वे जहाँ थोड़ा बहुत घर से लाए पकवान थे खा गए, और दौड़ते दौड़ते गए बहुत दूर तो इतनी जोर से भूख लगने लगी, ऐसे भयंकर उन खतरे में वे पहुंच गए। सब कहने लगे कृष्ण कृष्ण, हे राम राम बचाओ। जब भी खतरा जीवन में आता है ये ब्रजवासियों का एक ही तरीका है खतरे से बचने का, वो कृष्ण को पुकारते हैं, राम को पुकारते हैं, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, राम राम महाबाहो, आपने बहुत बड़े बड़े खतरे से हमें बचाया है, अभी एक सबसे बड़ा खतरा आ गया है, अगासुर से बचाया, बकासुर से बचाया, अभी इतना भयंकर भूख लग गया, इस भूख से आप हमें बचाओ। तब कृष्ण भी बहुत, कृष्ण आज पूरा उन्होंने ये निर्णय कर लिया, आज हम उन गोपियों को उनके प्रेम का उनके भक्ति का सेवा का फल जरूर दिलाएंगे। तो कृष्ण ने कहा आप सीधे वो द्विज ब्राह्मणों के पास जाइए। भगवान भी पिन पॉइंट वही जगह बताते हैं, चाहे तो बोले चलो ये इस वन में बहुत सारे फल है खाइए, या कहते कि उस गांव पे जाइए, थोड़ा सा दूर ही है, पर कहा कि थोड़ी और दूर जाके जाइए, वहाँ पे ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, वहीं पे जाइए। क्यों वहीं पे जाइए? क्योंकि भगवान आज उन गोपियों का भक्ति का आदान प्रदान करना चाहते हैं। तो ये गोप जितने भी थे वे गए, भगवान ने उनसे कुछ कहा कि आप कहो कि बलराम जी के साथ कृष्ण हैं और वे सब भूखे हैं, कुछ लेकर आइए। तब सारे गोप उनके पास गए, इति इति यानी कि इस प्रकार से सारे गोप ब्राह्मणों के पास गए। वो देखे, वो यज्ञ स्थल पर सारे ब्राह्मण स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, कोई देख नहीं रहा है। तो उन्होंने कहे, वे पहले तो हाथ जोड़े, फिर बाद में प्रणाम किए, फिर बाद में कहे कि देखो कृष्ण और बलराम आए हैं, उन्हें कुछ चाहिए। फिर भी वो कुछ नहीं किए तो कहा कि यज्ञ तो पूरा हो चुका है, दीक्षाया पशु संस्थाया सौत्रमनियश्चम सतमाम अन्यत्र दीक्षतस्य आपि नानम अस्नम ही दुष्यति। हे शुद्ध आत्मा ब्राह्मण, यज्ञ करता की दीक्षा तथा वास्तविक पशु यज्ञ तो हो चुका है, अभी आप दान दे सकते हो। एक काली सौत्रमणि नाम का यज्ञ है, उस यज्ञ में जब तक ब्राह्मण आहार भोजन प्रसाद नहीं ग्रहण करते तब तक किसी और को भी परोसा नहीं जाता है, अन्यत्र आप तुरंत दे सकते हैं। फिर भी वे कुछ नहीं किए तो सारे गोपों को बहुत गुस्सा है, यहाँ तक कि सुखदेव गोस्वामी महाराज जो कि इस लीला में प्रविष्ट हो चुके हैं उन्हें भी बहुत गुस्सा आया। इति ते भगवत याचनाम, वे ब्राह्मण जो है भगवान की जो याचना है, भगवान की जो बातें हैं, उन बातों को जो गोपों से कहा था ऐसे ऐसे कहो, और गोपों ने भगवान की याचना कहे सुनवंतम, सुन तो लिया पर ना तो सुन तो लिया पर शरीर से वे कोई इशारा भी नहीं किए, ना तो उनकी ओर देखे। सुनवंतम अपि ना शुश्रुष रूहु, सुनते हुए भी वे अंत न सुनी, इस प्रकार से व्यवहार किया जैसे कि ये बच्चे लोग फालतू में कुछ कह कर गए। इतना बड़ा वे भगवान के भक्तों के प्रति अनजाने में अपराध कर लिए। वे बच्चे हाथ जोड़े याचना किए, फिर भी ये ब्राह्मण के मन में क्या चल रही थी उसका वर्णन कर रहे हैं। शूद्र आशा, सुखदेव गोस्वामी महाराज कहते हैं कि शूद्र आशा, उनके मन में क्या चल रही थी, एक आशा थी, एक इच्छा थी, उनके मन में कुछ लालसा थी। वो लालसा कैसे शूद्र है, नीच है, निकृष्ट है, तुच्छ है। वो लालसा क्या है? स्वर्ग प्राप्त करने का लालसा, शूद्र आशा। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से वे यज्ञ कर रहे हैं। देखिए स्वर्ग के बारे में जब सुनते हैं तो प्राय लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। स्वर्ग का बहुत सुंदर वर्णन किया जाता है शास्त्र में, भगवद गीता में भी वहाँ पे वर्णन आता है। स्वर्ग ऐसा स्थान है जहाँ पे ना तो बुढ़ापा है ना तो वृद्ध कोई होता है, तो कौन नहीं ऐसे स्थान पे जाए। स्वर्ग में केवल सुंदर सुंदर बगीचा और बगीचों में अप्सरा और बहुत सारे गंधर्व गाते हैं, नाचते हैं, सोमरस पीते हैं, तो ये सब सुनकर किसका मन नहीं विचलित होगा। पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं शूद्र आशा, ऐसे तुच्छ आशा को लेकर। ये तुच्छ इसलिए है, किस लिए है, क्योंकि ये जो है इच्छा उनका इंद्र अपने तृप्ति के लिए है और हम शूद्र हैं, शूद्र यानी कि छोटे हैं। भगवान विभु है और हम अनु है। हम अगर अपने इच्छा को पूरा करने जा रहे हैं, हम छोटे हैं तो हमारे इच्छा भी छोटा है, हम अनु है हमारे इच्छा भी अनु है, हम शूद्र है तो हमारा इच्छा भी शूद्र है। हाँ, इसलिए हमारा आशा, हम शूद्र हैं छोटे हैं तो हमारा आशा भी शूद्र और छोटा आशा होगा, चाहे वो स्वर्ग प्राप्ति का क्यों ना हो। शूद्र आशा, बहुत धिक्कार रहे हैं सुखदेव गोस्वामी महाराज। क्यों धिक्कार रहे हैं इनको? क्योंकि वे ब्राह्मण हैं, क्योंकि वे मनुष्य हैं और मनुष्यों में भी वे भारत देश में जन्म लिए हैं और भारत देश में जन्म लेते हुए भी वे ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों में भी बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं और श्रेष्ठ ब्राह्मणों में वो ब्राह्मण जो मथुरा और वृंदावन के निकट है वैसे ब्राह्मण है। ऐसे ब्राह्मण है वो। अगा आयुर इंद्रिया रामो, भगवान भगवत गीता के तीसरे अध्याय में कहते हैं वो इच्छा वो कार्य जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं होता है वो पाप है। और इस प्रकार से अगर कोई जीता है भगवान को प्रसन्न नहीं करते हुए केवल अपने को, उनका आयु जो है अगर आयुर उनका पाप से भरा हुआ जीवन है, समय है। अगर आयुर इंद्रिय रामो, वो इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए अब जी रहा है, उनका जीवन व्यर्थ है। इसलिए शूद्र आशा, स्वर्ग का आशा भी क्यों ना हो पर अपने सुख के लिए तो वो शूद्र है। बहुत ही निकृष्ट आशा को लेकर क्या कर रहे हैं। मन में तो शूद्र आशा है पर तन से बुरी कर्मनो, हाँ बुरी कर्मानो, वो स्वाहा स्वाहा करते जा रहे हैं और उनका ध्यान पूरा उस यज्ञ को अच्छी तरह से संपन्न करने में, और ये बच्चे बीच में कुछ बोल रहे हैं पर वो सोच रहे हैं कि नहीं नहीं इन बच्चों को हम देखेंगे नहीं, क्योंकि हमारा जो यज्ञ है अधूरा हो जाएगा और ये अधूरा रह जाएगा तो हमारी स्वर्ग की प्राप्ति पूरी नहीं होगी। दूसरा विचार उनका ये चल रहा था, ये बच्चे कृष्ण के साथ हैं और कृष्ण कंस कंस कृष्ण को मारना चाहता है और कंस का भी डर था इन ब्राह्मणों के हृदय में। शूद्र आशा बुरी कर्मनो, और इसलिए वे उस यज्ञ करने के लिए पूरी तरह से तल्लीन थे। बच्चे रोए कहे कि हम भूखे हैं, आप कृपा करके भूखों को, जो व्यक्ति बहुत ही भूखा है उसको तुरंत तुरंत ही प्रसाद देना या तुरंत ही अन्न देना ये सबसे बड़ा धर्म है, ये कीजिए। नहीं माने, फिर बताए आपने जो यज्ञ किया है वो पूरा हो चुका है, अब तो आप दीजिए, फिर भी नहीं। बुरी कर्मनो, ऐसे भयंकर कर्मों में लगा है, जो कर्म जिसमें भगवान या भगवान के भक्तों को प्रसन्न नहीं किया जाता है वो कर्म बहुत ही भयंकर कर्म है। शूद्र आशा बुरी कर्मनो, ये तो मन और तन का वर्णन आया, और बुद्धि से वो क्या, वो कैसे हैं? वास्तव में बालिशा, वे अपने वे बालिशा हैं, बच्चे जैसे हैं। दूसरे शब्दों में उनका बुद्धि जो है बच्चा जैसा है, पर समझ क्या रहे, वृद्ध मानिना, वृद्ध का अर्थ होता है वृद्ध बुढ़ा उम्र से, वृद्ध का और एक अर्थ यह है बुद्धिमान है, बच्चे जैसे इनके हरकत, पर मान रहे हैं बहुत बड़ा बुद्धि बुद्धिमान वृद्ध मानिना। सुखदेव गोस्वामी महाराज का क्रोध भी एकदम से, सुखदेव गोस्वामी महाराज को भी अच्छा नहीं लगा कृष्ण के सखाओं को इस प्रकार से सता रहे हैं, जैसे वो कह रहे हैं हम भूखे हैं हमें कुछ दीजिए, पर देख भी नहीं रहे, सुन भी नहीं रहे, कुछ इशारा भी नहीं किए, हाँ या ना ये भी नहीं कहे, कुछ तो बोलो, कुछ नहीं बोले, मानो कि वो उपस्थिति ही नहीं है। इतना बुरा व्यवहार, सुखदेव गोस्वामी महाराज कहते हैं ये बालिशा वृद्ध मानी ना, अपने आप को बड़े चढ़े ब्राह्मण समझते हैं, बुद्धिमान समझते हैं, पर है बच्चे जैसे। जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को एक बार फटकारते हैं, भगवद गीता के शुरू में अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण ये युद्ध मैं नहीं लड़ूंगा, अनेक कारण देते हैं, इस युद्ध को लड़ने से हम जो है अनेक अनेक कारण देते हैं, कहते हैं कि इस युद्ध को लड़ने से सारे जो समाज के श्रेष्ठ व्यक्ति है उनका मृत्यु हो जाएगा और पीछे स्त्रियां और बच्चे रहेंगे, वे सब जो है अनाथ हो जाएंगे, उनके देखभाल करने के लिए कोई नहीं होगा और उन्हें भ्रष्ट कर देंगे तुष्ट लोग और वर्णाशंकर का वर्धन होगा। ये युद्ध लड़ने से क्या लाभ, इससे कोई सुख नहीं मिलेगा, इस प्रकार के अनेक तर्क दिए थे। भगवान सुने फिर मुस्कुराए, फिर कहे कि आप बड़े पंडित जैसे बात कर रहे हो पर है नंबर वन मूर्ख। उस श्लोक कौन सा है, पहला श्लोक भगवद गीता का दूसरे अध्याय का 11वां नंबर श्लोक, असोचयाम अन्वसोचस्तम प्रज्ञा बाधा स भाषसे। तो प्रज्ञा बाधा स, यानी कि बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति की जरूरत बात कर रहे हो पर बुद्धिमान नहीं हुआ, असोचयाम अन्वसोचस्तम प्रज्ञा बाधा स भाषसे। तो भगवान भी अर्जुन से कहते हैं आपके जो बातें हैं आपने तो बड़े बड़े किए हैं, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति की तरह बात किए हैं पर बुद्धिमान नहीं हो। जो पंडित होते हैं वास्तव में वो इस प्रकार की बातें नहीं करते हैं, पंडित वो होता है जो भगवान की इच्छा को जानता है और भगवान को इच्छा को पूरा करने में लग जाता है। आप जो कुछ भी कह रहे हो वो अपनी इच्छा को पूरा करने की बात कर रहे हो, इसलिए पंडित जैसे तर्क तो दिए पर पंडित नहीं हो, या चतुर व्यक्ति की तरह आप बात कर रहे हो पर आप चतुर नहीं हो। अर्जुन से ऐसे कहे भगवान ने, कहा कि आप मान रहे हो कि आप बहुत बड़े विद्वान हो, विद्वान जैसे बात कर रहे हो पर आप विद्वान नहीं हो, बुद्धिमान व्यक्ति की तरह बात कर रहे हो पर बुद्धिमान नहीं हो। अर्जुन को कह रहे हैं आप बुद्धिमान व्यक्ति की तरह बात कर रहे हो पर इनडायरेक्टली भगवान कह रहे हैं कि आप बुद्धिमान नहीं हो। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी भगवान कह रहे हैं वृद्ध मानी ना, वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान मान रहे थे। हम लोग ऐसे यज्ञ कर रहे हैं, हम शास्त्र के हर को पढ़ लिख चुके हैं और शास्त्र के हर श्लोकों को अच्छा उच्चारण कर रहे हैं, पर हमारी इच्छा क्या है, हमारा इच्छा यह है कि हम स्वर्ग चले जाएं। इसलिए यहाँ पे कहते बालिशा बच्चे जैसे हरकत कर रहे हैं, बच्चे को ये कमरा अच्छा नहीं लगा तो वो कमरे में चले जाते हैं, इसी प्रकार से पृथ्वी या ये कमरे से वो कमरा अच्छा है तो वो दूसरे कमरे में जाते हैं बच्चे, इसी प्रकार से पृथ्वी से अच्छा स्वर्ग है ये पता लगा शास्त्र से तो हम अभी स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा इच्छा कर रहे हो। वे समझ रहे हैं कि शास्त्र पढ़ के हमने बहुत बुद्धि लगाया और बुद्धि लगाने के बाद हमने ये निर्णय किया कि पृथ्वी से अच्छा स्वर्ग है, हमें उधर जाना चाहिए। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी महाराज कहते हैं बालिशा, खुद को बहुत ही पंडित समझ रहे हो, आपको शास्त्र पढ़ के ये निर्णय में आना चाहिए कि अभी ये भौतिक जगत है बहुत ही खतरनाक, आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावृत्ति न अर्जुना। आप कहीं पे भी जाओ इस जगत में, चाहे आप नीचे के लोग से ऊपर के लोग, ऊपर से या नीचे कोई भी लोग पे जाओ, ये जगत में कष्ट ही कष्ट है। आपको यहाँ से भगवत धाम जाना चाहिए। शास्त्र पढ़ने का सार क्या है, शास्त्र को सुनने का सार क्या है, ये वेदों को यज्ञों को करने के द्वारा क्या प्राप्त करना चाहिए, ये भाव कि हमें भगवान का भक्ति करना है और पुनः भगवत धाम जाना चाहिए। आप भगवत धाम को छोड़ के स्वर्ग जाने का इच्छा कर रहे हो, इसलिए शूद्र आशा बुरी कर्मना बालिशा वृद्ध मानिना। भगवान भगवत गीता में कहते हैं वेद शास्त्र इति आदि को पढ़ने का परिणाम क्या होना चाहिए, सर्वसचाह हृदि सन्निविष्टो मत स्मृते ज्ञान अपोहनम च वेदे च सर्वर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद वेदेव च हम। सारे वेदों को पढ़ने के बाद हमको यह निर्णय में आना चाहिए, सर्वस्य चाहम इति सन्निविष्टो मत स्मृते ज्ञान अपोहनम च वेदे च सर्वर अहमेव वेद्यो। भगवान को जानना चाहिए, जो भगवान वेदांत कृत है वेदविद है उस भगवान को जाना चाहिए और उनको प्रसन्न करना चाहिए। ये सार है, इसे आप मिस कर लिए, इसे आप निशाना क्या है चूक गया। बहुत अच्छी तरह से बंदूक लेके खड़े थे या तीर लेके खड़े थे, निशाना क्या है वो देख लिया है, वहीं पे जाना है, सब अच्छी तरह से फिट कर लिया है, पर क्या कहते हैं जो निशाना है, जिस टारगेट है या जहां पे तीर को मारना चाहिए उसे छोड़कर और कहीं पे नजर गया और वहां पे तीर छोड़ रहे, कहीं पे क्या बोलते हैं कहीं पे निगाह ऐसे हो गया है। ये मनुष्य देह मिला है, जन्म से मृत्यु ऐसा कार्य करे कि कार्य करते 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 जैसे ही देह त्यागने जाए तो सीधे भगवत धाम को हम प्राप्त करें। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। पर ये ऐसे कार्य करने लगे, आत्म उन्नति का कार्य करते 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 वे भगवत धाम की ओर जाने के बदले स्वर्ग के ओर जाने लग गए, तो इसलिए बहुत निशाना चूक गया इनका। जब कोई दौड़ लगाता है, बच्चे लोग दौड़ लगाते हैं तो स्पर्धा होता है, तो 8 या 9 लड़के खड़े रहते हैं दौड़ में, तो इस दौड़ में जब रहते हैं तो 100 मीटर का दौड़ रहता है, तो सामने वाला को कहा जाता है अभी तैयार हो जाओ, हाँ रेडी स्टडी गेट सेट गो बोलते हैं, तो गो बोलते हैं तो सामने वाला 8 स्पर्धा है, सबको एकदम सतर्क रहना पड़ता है, और जैसे ही गो बोलते हैं तो छू मंतर हो जाना चाहिए। अगर कोई दौड़ता है और सामने कुल्फी वाला है उसको देखता है या किसी और को देखता है तो उस दौड़ में वो फेल हो जाता है। इसी तरह मनुष्य देह जैसे ही प्राप्त हुआ है, जैसे ही हमारी बुद्धि खुल गई भगवान कृष्ण की प्राप्ति करना है तो तुरंत कृष्ण प्राप्ति के लिए सब कुछ निछावर करना चाहिए। अगर थोड़ा भी इधर उधर हो गए तो वो शूद्र आशा माना जाएगा और जो भी कर्म करेंगे वो बुरी कर्म माना जाएगा, भयंकर कर्म माना जाएगा। तो ये जो है शूद्र आशा नहीं, बृहद आशा हमारा होना चाहिए। बृहद आशा क्या है? कृष्ण को प्रसन्न करना। और बुरी कर्म नए, हमारा कर्म जो है प्रेम से भरा होना चाहिए, और वो कर्म जिसे भगवान प्रसन्न हो जाए ऐसे कर्म हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। पर ये ब्राह्मण इतने श्रेष्ठ पदवी को प्राप्त कर चुके थे, पर वे निशाना चूक गए और कृष्ण कृष्ण के द्वारा भेजा गया इन गोपों का जो प्रार्थना है वे समझे नहीं, और वे उन्हें अनसुना करते हुए, सुनवंतम सुनते हुए भी अनसुना कर दिया। इतना भयंकर अपराध कर लिया है, पर ये लड़के अब वापस कृष्ण के पास आते हैं। तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक से बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा हमें यह मिल रही है कि हमारा जो जीवन है, ये जीवन जो है बहुत ही क्षणभंगुर है, हम बहुत ही कम समय के लिए इस धरातल पर है, और हम चाहिए कि ये जीवन में बचा कुचा जो भी समय है हम इधर उधर ना भटकते हुए भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए लगा दें। हम सब बड़े खतरनाक परिस्थिति से गुजर रहे हैं। ये भौतिक जगत में इतना माया का प्रभाव है कि सब कुछ अनुकूल होते हुए भी व्यक्ति भटक सकता है, विचलित हो सकता है। पर हमें प्रभुपाद जी के चरणों में, वैष्णव के चरणों में, भगवान के चरणों में प्रार्थना करना चाहिए, कृपा करके हम शूद्र जीव हैं, हमें कृपा करके सही मार्ग में रखिए और सही मार्ग से लेकर जाइए और सही स्थान पे पहुंचाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अगर तीव्रता से प्रार्थना करें भगवान एक खतरनाक परिस्थिति से हमें बचाए ही देंगे। एक बार प्रभुपाद जी अमेरिका में प्रचार कर रहे थे, तब उनके एक शिष्य उनको ये नोटिस आ गया कि उन्हें अभी वियतनाम वॉर, यानी कि उस समय अमेरिका और वियतनाम के पीछे युद्ध चला था। वियतनाम में बहुत सारे नौजवान अमेरिका के जो सैनिक है वे घायल होकर मृत्यु को प्राप्त किए, अब और नौजवान चाहिए। तो ये भी नौजवान था, तो उसको भी नोटिस आ गया आपको अब फौज ज्वाइन करना होगा। तब वो बहुत डर गया। बहुत समय के बाद प्रभुपाद जी जैसे गुरु हमें मिला और इतना अच्छा भक्ति चालू हो गया, और वो जगन्नाथ जी का एक छोटा सा लॉकेट था उनके पास, हाँ वो पहन लिया था और जगन्नाथ जी को पहन के घूम रहा था। नोटिस जब आया तो वो डर गया, प्रभुपाद जी को प्रणाम किया, बोला अब मैं जा रहा हूँ। प्रभुपाद जी कुछ बोले नहीं, और जाते जाते जगन्नाथ जी को अपने छाती से लगाए थे छोटा जगन्नाथ जी, और भगवान का नाम जप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और बहुत सारे युवक लाइन में खड़े थे, उन सब का चिकित्सा किया जा रहा था, इंटरव्यू लिया गया था, और सबको मेडिकल टेस्ट हेल्थ टेस्ट ले रहा था। तो ये देखा कि ये व्यक्ति बार बार कुछ बड़बड़ा रहा है, तो उनको कुछ गड़बड़ लगा इस लड़के पे। फिर बाद में उनको मेडिकल टेस्ट के लिए उनके कपड़े वगैरह उतार के हाइट वेट सब नोट कर रहे थे, तब देखा कि इसके गले में काला काला सा कुछ है और कुछ बड़बड़ा रहा है। तो देखा कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये सैनिक बनने के लिए ठीक नहीं है, ये युद्ध लड़ने जाएगा वहाँ गड़बड़ कर देगा। तो तुरंत उसको निकाल दिया, जाओ यहाँ से। तो वो खुश होकर फिर से नाचते नाचते गया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान ने बहुत बड़े खतरे से उन्हें बचा दिया। अगर तीव्रता से हम भजन करेंगे तो भगवान हमें बड़े बड़े खतरे से बचा देंगे और हमारे जीवन को सही मार्ग में लगा देंगे। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी महाराज बता रहे हैं कैसे ये बालकों को इन ब्राह्मणों ने तिरस्कार किया। भगवान के इच्छा को, भगवान के जो इच्छा थी, याचना थी, वो गोपों ने बता दिया। कृष्ण कहते हैं कि हमें भोजन दीजिए, प्रसाद दीजिए, वो सुनते हुए भी अनसुना कर दिया। क्यों किया? क्योंकि उनके मन में शुद्र आशा थी, हमको एक अच्छा स्थान चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, ऐसे शुद्र आशा थी। और उस शुद्र आशा को पूरा करने के लिए बुरी कर्म ना, बहुत सारे कर्म कर रहे थे। ऐसे बातों का निंदा करते हुए, धिक्कारते हुए सुखदेव गोस्वामी महाराज कहते हैं, बालिशा, ऐसे विचार बहुत ही निकृष्ट है, बच्चे जैसे हैं। बालिशा इच्छा तो बच्चे जैसे हैं, बुद्धि तो उनका बच्चा जैसा चल रहा है, पर वृद्ध मानिना, समझ रहे थे कि हम सबसे बुद्धिमान हैं, क्योंकि शास्त्र को पढ़कर हमने ये निर्णय किया है, पृथ्वी को छोड़कर अगले जन्म में हमें स्वर्ग जाना है। ये बुद्धिमानी है उनका, पूरा शास्त्र पढ़ने के बाद बुद्धि लगाया ये। और सुखदेव गोस्वामी महाराज कह रहे हैं ये बालिशा है, तुच्छ है, निकृष्ट है। उनको चाहिए था कि शास्त्र पढ़कर ये निर्णय पे आए कि हम पृथ्वी से अभी हम भगवत धाम को जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में कोई नया से नया व्यक्ति भी आ जाता है, वो एक किताब पढ़ लेता है, तुरंत वो निर्णय में आते हैं पृथ्वी से हमको इस देह को छोड़ के भगवत धाम जाना है, पर ये शास्त्र इत्यादि पढ़कर कहते हैं कि हमें स्वर्ग जाना है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।